भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज 15 मार्च सन 2011 आज के संध्या जागृति में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस 19 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाएगा और 18 मार्च को हमारे हॉस्पिटल में मनाया जाएगा। आप सबको पता है ना 18 मार्च को दोपहर को कितने बजे शुरू होगा? 1:30 बजे शुरू होगा। भगवान का अभिषेक होगा, सुंदर श्रृंगार किया जाएगा और प्रवचन होगा गौर पूर्णिमा के विषय में, शायद नाटिका भी होगी, डांस भी होगा, हरे कृष्ण डांस, महामंत्र डांस, हरि बोल। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस है इसका मतलब समझना सबको जरूरी है। कितने लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम आज पहली बार सुना है? यस, आप लोगों से कितने लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम आज पहली बार सुना है? हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सबको उनका जीवन के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि वे और हम इनका संबंध क्या है। श्री कृष्ण भगवान है, उनका और चैतन्य महाप्रभु का क्या संबंध है, हमारा और उनका क्या संबंध है, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा उत्सव जो है एक रॉयल टाइम पास हो जाएगा। चलो थोड़ा ऑन ड्यूटी 3 घंटे फ्री मिल रहे हैं, प्रसाद भी मिलेगा, चलो जाओ टाइम पास कर लिया। नहीं, हमको अगर किसी वस्तु में व्यवहार करके अगर हमको 1000 रुपया प्रॉफिट मिल सकता है तो हम लोग 100 रुपये को लेंगे, उसमें 1000 रुपये लेंगे, इतना मिलता है उतना पूरा लेना चाहिए। तो अगर हमको जानकारी नहीं है तो वो 1000 रुपये का बेनिफिट जो है वो 1 रुपया हो जाएगा, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है क्या लेना क्या मालूम नहीं। चैतन्य महाप्रभु का हमारे जीवन में बहुत गहरा संबंध है, किसी को पता है किसी को पता नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये भगवान के अति दयालु अति कृपालु अवतार है। अवतार कहते हैं, सबसे उदार अवतार, इतने कृष्ण भी भगवान के स्वयं भगवान जब कृष्ण बन के आते हैं तभी भी उनका अवतार इतना दयालु नहीं होता है। वो बोलते हैं कि सबसे पहले मेरे शरण में आ जाओ तब मैं तुमको पापों से मुक्ति दिला दूंगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा कभी बोलते नहीं है कि आप शरण आओगे तो मैं मेरी भक्ति आपको दूंगा, मेरा प्रेम आपको दूंगा, आपके हृदय में मेरा प्रेम जागृत कराऊंगा, ऐसे नहीं बोलते। इतना कंडीशन है उनका, इतना सख्त कंडीशन होने के बाद भी केवल कहते हैं मोक्ष इच्छामि मा शुचः, पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, अहम सर्व पापेभ्यो, ऐसा नहीं कहूंगा, कहा कि मैं आपको ददाति कृष्ण प्रेम, ऐसा नहीं बताया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये वही कृष्ण है लेकिन अकृष्ण रंग में आए, मतलब वो सामने रंग में नहीं आए, वो गौर वर्ण में आए, और इस अवतार में वो बिना योग्यता के बिना किसी मेहनत से सब जीवों को कृष्ण प्रेम देते हैं, भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम देते हैं, लव एंड डिवोशन, प्रेम भक्ति, जो किसी भी युग में इतनी सुलभ नहीं है। कौन सा भी युग होगा तो उतनी सुलभता से भगवान का प्रेम और भक्ति प्राप्त नहीं होती है, ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु का अवतार। और कलयुग के लोग जो है बहुत पतित है, हम सब लोग बहुत पतित है, हमारा आयुष्य बहुत कम है, हमारी बुद्धि बहुत कम है, हमारे कुछ याद रहता नहीं, कुछ कुछ सद्गुण भी नहीं है, हमेशा झगड़ते रहते हैं कलयुग के लोग, कहीं ना कहीं बहाना बनाकर कहीं ना कहीं झगड़े चल रहे हैं, ट्रेन में, देश में, राज्य में, गांव में, सड़क पे, कोई बहाना जरूरत नहीं है, और किसी के मन में भगवान के लिए कोई इच्छा नहीं है, भगवान के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा भी नहीं है, गरीबी है, पानी नहीं मिल रहा, हवा नहीं मिल रही है, कितना तकलीफ है, भूकंप हो रहा है, सुनामी आ रही है, बरसात हो रही है, कभी अकाल पड़ रहा है, ऐसा भयंकर समय है कलयुग का। लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है कि इतना कलयुग का भयंकर अवस्था है और भयंकर होती जा रही है, फिर भी सभी युगों के संत लोग मिलकर कलयुग की पूजा करते हैं। कोई गलत वस्तु की पूजा करता है कभी कभी, कोई चीज अच्छी नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हाँ जिसमें कोई सद्गुण नहीं है, दुर्गुण भरे हुए हैं, हाँ झगड़ा भरा हुआ है, ऐसे वस्तुओं की कोई पूजा नहीं करता है। मतलब कोई जरूरत बात होगी ना उसके अंदर, उसको देख के उसकी पूजा करते होगे ना। तो बाहर से खराब दिखने वाला ये कलयुग है, उसकी संत लोग क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि कलयुग में एक ऐसी बात है अस्ति एक महान गुण, कि इसमें भगवान का नाम कीर्तन करने के बाद तुरंत भगवान के धाम में प्रवेश मिल सकता है, ये एक सद्गुण है इसके अंदर। बाकी युगों में तपस्या करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है करने के लिए, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है कि भगवान के धाम में प्रवेश मिलेगा, और गारंटी यह भी नहीं है कि भगवान का प्रेम और भक्ति प्राप्त होगा। लेकिन कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं और अपना पवित्र नाम लोगों को देते हैं और उस नाम के जप में केवल श्रद्धा की अपेक्षा करते हैं, और उस श्रद्धा के साथ में जो उनके नाम का कीर्तन करते हैं, जैसे आपने अभी नृत्य किया बहुत सुंदर भगवान का नाम लेते हुए, ये जो कोई करता है वो तुरंत चैतन्य महाप्रभु की कृपा, असीम कृपा, अनंत कृपा को प्राप्त करता है। इस एक गुण के लिए कलयुग की संत लोग पूजा करते हैं, क्योंकि सत्ययुग में लाखों साल ध्यान करने के बाद भी ये प्राप्त नहीं होता है, त्रेता युग में हजारों साल यज्ञ करने के बाद भी ये प्राप्त नहीं होता है, और द्वापर युग में सैकड़ों साल मंदिरों के विग्रहों की पूजा करने के बाद भी ये प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होती है। वो कलयुग में कुछ 50-60 साल अगर आप किसी ने भगवान का नाम का भजन किया, कीर्तन किया, तो वो भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकता है। मतलब लाखों, हजारों और सैकड़ों साल मेहनत करने के बाद भी जो नहीं मिलता है, वो कुछ साल न सोते हुए भगवान का नाम जप करेंगे तो प्राप्त हो जाता है। आप सोच सकते हैं, इस एक महान गुण के लिए संत लोग उसकी पूजा करते हैं, और भगवान भी बड़े दयालु हैं। वो तो उनके धाम का गौलोक वृंदावन धाम, उनके धाम का जो सर्वोच्च आनंद है वो इस हरे कृष्ण मंत्र के जप के माध्यम से वो सबको बांटते हैं। दुर्योधन की सबसे पावरफुल दवा होती है वो कैप्सूल में बंद करके अगर आपको देंगे, एक गोली में आपको शक्ति आ जाएगी, पावर पैक बोलते हैं। सारे युगों का दिव्यता इस महामंत्र में डालकर, अपने आप को डालकर, अपने आप की सारी शक्ति को डालकर, भेद बदलकर वही भगवान जो कलयुग में उसके द्वापर युग में सरेंडर की विनती मांग करते हैं और केवल पापों से मुक्ति करते हैं, वही भगवान जो है भेद बदलकर कलयुग में गौर वर्ण में आते हैं, वो सर्वोच्च धन जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र से सब लोगों को फ्री में बांटते हैं। कोई नियम भी नहीं है, तत्रार्पिता न नियमिता न स्मरणी न काला, कोई सुबह मत करो शाम मत करो ऐसा भी नहीं। अच्छा टाइम बताया है सुबह, अच्छा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच रात में करो प्रॉब्लम नहीं है, उठते हुए करो, सोते हुए करो, स्नान करते हुए करो, खाते हुए करो, काम करते हुए करो, खाना बनाते हुए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में करो, रेस्ट में करो, चलते हुए करो, वॉकिंग में करो, कोई डिफिकल्टी नहीं, ट्रेन में जा रहे हो, हवाई जहाज में बैठे हो, कोई समय का नियम नहीं, कोई जगह का नियम नहीं, कैसे नहीं कही घर के अंदर ही करो, बाहर मत करो, बगीचे में मत करो, जंगल पहाड़ में मत करो, नहीं किसी भी जगह पे कर सकते हैं। और इतना महत्व बताया उसका कि जिस जगह पे आप जप करते हो वो वैकुंठ बन जाता है। अगर गटर के पास खड़े होकर जप करोगे और चार लोग को बुला के कीर्तन करोगे तो वो वैकुंठ बन जाता है उस समय के लिए, कुछ समय के लिए को ना हो, इतनी शक्ति है इसके अंदर। और साथ साथ में क्या बोलते हैं कि बच्चा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, सुंदर हो, कुरूप हो, धनी हो, गरीब हो, पावरफुल हो, बिना पावर का हो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कर सकता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है इसके जैसा उदार, कोई नियम ही नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं जाड़ी बड़ी हुई संत है, परिवार छोड़ चुका है, धन छोड़ चुका है, जंगल में तपस्या कर रहा है उसी को प्राप्त है, ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चांडाल भी कर सकता है, यवन भी कर सकता है, म्लेच्छ भी कर सकता है, पापी भी कर सकता है। इनफैक्ट सबसे पतित जो है उसके लिए अगर पाप का मुक्ति चाहिए तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि भगवान का नाम लो, इतनी शक्ति है उसके अंदर। और ये देने के लिए स्वयं कृष्ण अपना भेष बदल कर आते हैं, जो स्ट्रिक्ट उनका रूप है वो छोड़कर एकदम दयालु भेष बना के आते, ताकि कोई उनको देख के जो भी प्राप्ति है वो कर सकता है, मैक्सिमम अति से अति प्राप्ति जो है ले लो, कोई कीमत भी नहीं है, केवल श्रद्धा रखो और ले लो। और मैं आपको वादा करता हूं सब पापों से मुक्ति दिला दूंगा और साथ साथ भक्ति भी दूंगा। ऐसे ही एक बार वो गोपियों को सर्वोच्च आनंद दे रहे थे रास के नृत्य में, और गोपियों को लगता है कि मेरे साथ ही नाच कर रहे, मैं इतनी स्पेशल गोपी हूं कि मेरे साथ नाच कर रहे, और सबके साथ में थे वो, उतना आनंद रूप धारण किया था उन्होंने और सबको दिव्य आनंद दे रहे थे वो नृत्य के अंदर। तो सब गोपियों को गर्व होता है कि मैं बहुत स्पेशल गोपी हूं, सबको लगता है कि मेरे साथ ही है, इतनी स्पेशल हूं, सबको छोड़ के मेरे साथ में है। तो भगवान को जो गर्व है ना वो अच्छा नहीं लगता है, गर्व आते ही भगवान दूर चले जाते हैं, अहंकार आते ही भगवान से हम जुदा हो जाते हैं, ये बहुत समझना जरूरी है, चाहे वो गोपी क्यों ना हो। जैसे ही गोपियों ने अहंकार किया कि मैं स्पेशल हूं, तुरंत भगवान अदृश्य हो गए। तो सब गोपियां बताने लगी, पता है मेरे साथ में थे वो, अकेले मेरे साथ में थे, तो बाकी वाले भी वही बोलते, अरे मेरे साथ में भी थे, सब लोग ही बोल रहे थे मेरे साथ में भी थे। तो सबको ध्यान में आया वो केवल अकेले मेरे साथ नहीं थे, वो सबके साथ में थे। तो फिर पश्चाताप किया, अरे कितना बड़ा गलती किया, इतने अच्छे हमारे साथ में थे और हमने गर्व किया और अदृश्य हो गए, देखो सब लोग नुकसान में, अभी क्या करें, अभी रोते रोते हुए गाते हैं, पश्चाताप करते हुए, हृदय से पश्चाताप करते हैं कि हमको गर्व नहीं करना चाहिए था। तो भगवान भी थोड़े सुखी हैं गोपियों को छोड़कर, वो जाके पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, वो ध्यान करते हैं राधा रानी का, इतना ध्यान करते हैं, इतना ध्यान करते हैं कि राधा रानी का ध्यान करते ही ऐसा दिव्य आनंद उनको प्राप्त होता है। तो वो सांवले रंग के कृष्ण जो है वो गोरे रंग के बन जाते हैं, जैसे राधा रानी का रंग है, राधा रानी गौर वर्ण की है, सुनहरे गौर वर्ण की है। तो उनका ध्यान करते करते वो गौर वर्ण के बन जाते हैं स्वयं, वो मोरपंख लगा हुआ है, पीतांबर धारण किया है, और सब गोपियां रोते रोते पश्चाताप करते करते हाय हाय करते करते उनको ढूंढते ढूंढते वहां पर आते हैं, और देखते तो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन वो नहीं है, वो तो सांवले रंग के थे, ये तो गोरे रंग के हैं। तो आश्चर्य करते कौन है ये, कहीं दिखा नहीं उनको वृंदावन में पहले कभी, लगते कृष्ण जैसे हैं लेकिन है एकदम गोल्डन रंग के। तो फिर धीरज करके उनको हाथ लगाते हैं, जैसे हाथ लगाते हैं उनका भाव वापस आते हैं, फिर सामने रंग के बन जाते हैं। तो राजा रानी सब पूछते हैं कि ये क्या चमत्कार है। तो उन्होंने कहा कि राजा रानी तुम्हारे बारे में जब मैंने ध्यान किया तो मुझे बहुत आनंद हो गया, इतना आनंद हो गया कि इस आनंद का मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा इसी तुम्हारे भाव में तुम जैसे मेरे बारे में सोचती हो उसी भाव में मैं अगले युग में अवतार लूंगा। और जो प्रेम का अनुभव मैंने किया है तुम्हारे बारे में सोचकर वो प्रेम मैं सबको बांटूंगा। तो उससे भगवान ने वादा किया था कि मैं ये भक्ति का जो आनंद है वो लोगों को लुटाऊंगा, क्योंकि उनको पता नहीं है कि राधा रानी या हम सब लोग जब जब करते हैं या उनके भक्त जो गोपियां जब जब करते हैं उनका ध्यान करते हैं उनकी सेवा करते हैं उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो उनको भगवान की सेवा करने के बाद में क्या आनंद मिलता है ये उनको पता नहीं है, भगवान को पता नहीं है, उनको जो अनुभव होता है वो उनको पता नहीं है। तो वो ऐसा कैसा आनंद है जो मेरी सेवा करने में उनको प्राप्त होता है, मेरी सेवा करने से मुझसे अधिक इनको ज्यादा आनंद प्राप्त हुआ दिखाई पड़ता है। भगवान होते हुए भी एक भक्त को क्या आनंद मिलता है भक्ति करके वो उनको पता नहीं चलता है, वो अनुभव करने के लिए मैं आऊंगा बोलते भक्त बनकर आऊंगा और मेरी ही भक्ति करूंगा और मेरी भक्ति करने में भक्त भक्तों को क्या आनंद मिलता है उसका खुद अनुभव करूंगा, साथ साथ में सबको मेरे धाम का जो सबसे बड़ा धन है वो फ्री में बांटूंगा, जिसके लिए सत्ययुग द्वापर युग त्रेता युग में मेहनत करने के बाद में वो प्राप्त नहीं होता है वो सबको प्राप्त कराऊंगा बांटूंगा एकदम खुले हाथ से। कितनी बड़ी कृपा है हा? इतनी बड़ी कृपा जब होती है तो सोना नहीं चाहिए आदमी को, जगह रहना चाहिए, क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं ना तो हमको जागरूक रहना चाहिए, ऐसा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु कलयुग में कभी आए पता है, उस दिन चंद्र ग्रहण था, इसके कई कारण बताए कि जब पूर्ण चंद्र जैसे गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु अवतार लेने वाले हैं सब पर कृपा करने के लिए तो इस दुनिया के चांद का क्या काम है, इसलिए राहु जो है खा जाता है, यानी कि चंद्र ग्रहण राहु की वक्र दृष्टि और राहु उसको खा जाता है। ये भाव की बात है कि जब पूर्ण चंद्रमा के समान तेजस हजारों चंद्र के समान जो तेजस्वी हैं ऐसे गौरांग महाप्रभु का जन्म होने वाला है तो इस एक चंद्र का क्या काम है। और दूसरा कारण उसका यह था कि चंद्र ग्रहण को बहुत अपवित्र मानते हैं, है ना, हम लोग उपवास करते हैं, हम लोग पानी को ढपके रखते हैं, उसको तुलसी डालते हैं, सब अन्न फेंक देते हैं, है ना, बहुत सारा चीज करते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं, मंदिर बंद रखते हैं, बाहर घूमने को जाते नहीं है, बच्चे को लेके जाते नहीं है, जो गर्भार गर्भवती स्त्रियां होती है वो बाहर नहीं निकलती है और जो अधिक कमजोर अवस्था में होते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, ऐसा अशुभ माना गया है। तो सबसे अशुभ घड़ी में आए, अरे आप बोलेंगे आपका अगर कोई बालक का जन्म हुआ और वो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के दिन हुआ तो बोलेंगे कहां कैसा राक्षस जन्म जाए पता नहीं कितनी अशुभ घड़ी में आए, ऐसे बोलेंगे हम लोग। तो यहां पर तो भगवान चंद्र ग्रहण की अशुभ घड़ी में जन्म नहीं जा रहे हैं, तो क्या रहस्य है इसके अंदर, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय सब भक्त लोग क्या करते हैं, नदी में अपने आप को डुबाते हैं गले तक, और गले तक नदी में डुबाकर केवल भगवान का नाम जपते हैं ताकि ग्रहण का जो गलत परिणाम है ना, पाप परिणाम अशुभ परिणाम जो है वो हमारे ऊपर ना हो। इसलिए सूर्यास्त वेद लगने से, ऐसे नहीं शुरुआत होने के बाद नहीं, शुरुआत होने के पहले वेद लगते हैं, तो वेद लगने के समय से शुरुआत होने के बाद पूरा बीच में आने के बाद एंड के बाद वेद छूटने के बाद तक पानी में रहते हैं ताकि उस समय का एक भी अशुभ परिणाम दिमाग पर और मन पर नहीं होना चाहिए, और हर समय नदी के अंदर रहकर ही भगवान का नाम जप करते रहे जोर जोर से। तो उस समय क्या हुआ था, जितने भी लोग थे सब नदी में उतरे हुए थे और जोर जोर से भगवान के नाम का गुणगान कर रहे थे, और जो मुसलमान लोग थे जो यवन पापी लोग थे वो ये सब लोगों को चिढ़ाने के लिए नकल करने के लिए वो भी हरे कृष्णा 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 गोविंदा गोविंदा बोल रहे थे, इसका मतलब जो भक्त थे और नहीं थे, जो पापी थे और नहीं थे, पुण्यवान थे पापी थे, सभी लोग एक साथ में भगवान के नाम को पुकार रहे थे। तो वो दिखाना चाहते थे कि इसी काम के लिए मैं आने वाला हूं, इसलिए उस समय को हमने जन्म लिया, जन्म से ही बता दिया जन्म आते ही सब दुनिया जप कर रही है। तो आशिक भाड़ी शुभ हो जाती है जब भगवान का नाम लिया जाता है, और बहुत शुभ घड़ी है, आपके घर में शादी है, आपके घर में बच्चे का नामकरण विधि है, और बेटी का सगाई है, और बारात आने वाली है, और आप भगवान को भूल जाते हैं, तो वो सबसे अशुभ घड़ी है। और किसी का मैयत हो गया है, आपका लॉस हो गया है, कोई घर में चोरी हो गई है, घर में आग लग गई है, भूकंप आ गया है, और आपको भगवान को याद करते हैं, तो वो शुभ हो जाता है। ये शुभ अशुभ का जो व्याख्या है ना, वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग होता है, लेकिन अद्भुत व्याख्या क्या है उसकी, जिस जगह पर भगवान का नाम का याद करते हैं हम लोग, भगवान को याद करते हैं, वो जगह, वो घटना, वो समय पवित्र हो जाता है। तो इसलिए वो चंद्र ग्रहण समय पर जन्म लिया उन्होंने। भगवान कृष्ण ने कैसे जन्म लिया, बीच रात में आंधी और तूफान में। आप बोले क्या मायूस घड़ी है, इतनी घनघोर वर्षा हो रही है, हाँ कितना कष्ट है, जमुना को बाढ़ आ रहा है, ये क्या समय है जन्म लेने का, जो भी झेल के अंदर। हाँ कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, अरे मैं जेल में गया, तो भक्त लोग बोलते हैं अच्छा हुआ कृष्ण के जन्म स्थान में गया। भक्त लोग को सोचने का तरीका अलग होता है, कोई बात नहीं आप जाओगे वहां पर भी जप करो। ऐसे कुछ लोग थे जो हरे कृष्ण कीर्तन रास्ते में कर रहे थे फॉरेन कंट्री में, तो उनको पुलिस ने अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। उन्होंने खत लिखा भक्तों को मंदिर में, अरे हमको अरेस्ट कर लिया है, तो प्रभुपाद ने कहा कौन, डोंट वरी, आप सब लोग कृष्ण के जन्म स्थान में पहुंच गए, अब यार वहां पर भी कीर्तन करो। तो वहां पर चालू किया कीर्तन, उन्होंने डब्बा बाटली चमचा लेके चालू किया कीर्तन, बहुत कीर्तन किया, तो जेल परेशान हो गया, नहीं क्या हो रहा है, सब लोग सब नाच रहे हैं जेल के अंदर, सब लोग दुखी हो रहे जेल के अंदर ना, ये सब लोग नाच रहे हैं, तो परेशान हो गए, बोले इनको छोड़ दो जेल से, ये जेल के अंदर वातावरण बिगाड़ रहे हैं। तो भक्तों ने बाके प्रभुपाद को बताया कि हमको छोड़ दिया उन्होंने, मैंने कहा था ना हरे कृष्ण कीर्तन करो अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ तो जेल की जेलर भी जप करने लगा और कैदी भी जप करने लगे, सब लोग जप करने लगे और नाच रहे हैं खुशी से, कोई झगड़ा नहीं कर रहे, मारा मारी नहीं कर रहे जेल के अंदर, तो ये चाहिए वो चाहिए, वो जेल में झगड़े होते ना डॉन लोग सब झगड़ा करते हैं जेल के अंदर, बहुत खून खराबा करते हैं, पत्थर से फोड़ सर फोड़ते हैं किसी का, सब लोग आनंद से नाच रहे हैं। तो इसलिए अशुभ घड़ी हम समझते हैं कि अशुभ है, लेकिन भगवान का नाम लेने से सब घड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। और चैतन्य महाप्रभु चंद्रग्रहण पे आए, उसके पहले ऐसा माहौल था, महाविष्णु के अवतार आए थे अद्वैत आचार्य, हम बोलते ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, ये दो अद्वैत आचार्य जो है ये महाविष्णु के सदाशिव के अवतार है, उन्होंने भक्ति के रूप में जन्म लिया था, चैतन्य महाप्रभु के पहले आए थे, बहुत प्रचार किया उन्होंने, बहुत कोशिश किया लोगों को भक्त बनाने का, लेकिन ब्राह्मण लोग भी इतने गिर चुके थे कि ब्राह्मण लोग भी ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण मानते हुए अपने आप को भी एक बार भी सालों साल में गोविंद का नाम लेते नहीं थे। और पता है क्या करते थे, गुड्डा गुड्डी का शादी करते थे, बहुत बड़ा लोगों को मेहमानों को बुला के गुड्डा गुड्डी को सजा धजा के हार बनाते थे, फीस्ट करते थे, नाचते थे कूदते थे, और कभी कभी कुत्ता और कुत्ती का हाजी करते थे, कभी बिल्ला और बिल्ली का हाजी करते थे। हाँ ऐसे सब समय में काम करने में टाइम वेस्ट कर रहे थे, किसी को धर्म का ग्रंथ पढ़ने में, यज्ञ करने में, पूजा करने में, किसी जप करने में कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं था, प्रचार कर करके थक गए। क्या स्थिति है, कितनी भयंकर स्थिति है, ब्राह्मण कुल में चक्रवर्ती भट्टाचार्य होने पर भी कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा है, साल में एक बार भी नहीं बोलते गोविंद का नाम, ना कोई नदी में स्नान कर रहा है गंगा जी में, ना कोई दान पुण्य कर रहा है, ना कोई गो सेवा कर रहा है, ना कोई भगवान की सेवा कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो परेशान हो गए वो, महाविष्णु है वो, कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है, हार गए वो। उन्होंने फिर ग्रंथ में पढ़ा, किधर तो भी क्या लिखा था ग्रंथ में कि जो भक्त गंगा किनारे में बैठकर शालिग्राम शिला की गंगा जल से और तुलसी से मनसोक्त से पूजा करता है और भगवान के नाम को पुकारता है, उसकी पुकार सुनकर भगवान इच्छा पूर्ण कर देते हैं उसकी। सब छोड़ दिया प्रचार प्रचार, शालीग्राम शिला लिया, गंगा जी के किनारे बैठ गए और चंदन तुलसी और गंगा जल से सेवा करते रहे और पुकारते रहे भगवान को कि अभी आप तुम्हें आ जाओ, अभी तुम्हारे बिना यहाँ पर उद्धार लोगों का नहीं होगा। ये लोग इतने पतित हैं, इतने झगड़ा करने में और बाकी सारा चीज काम करने में इतने एक्सपर्ट हैं, आपके नाम में उनको कोई रुचि नहीं है, पाप से भरे हुए हैं, गुड्डा गुड्डी कुत्ता कुत्ती को शादी करने में लगे हुए हैं, क्या करेंगे ये लोग, कैसा उद्धार होगा इनका, अभी आपको ही आना होगा। तो भगवान जब गोलोक में विश्राम कर रहे थे तो इनकी पुकार सुन सुनकर व्याकुल हो गए और उन्होंने अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु को। ये स्थिति थी। आप सोच सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत दयालु है, और जब जन्म लिया उन्होंने तो जब गर्भ में थे तो सारे देवता उनको आके प्रणाम करने लगे। सच्ची माता जो उनकी माता का नाम है, जो यशोदा का अवतार है, वह आश्चर्यचकित हो गए, अरे क्या है मेरे पेट के अंदर, सब देवता आके प्रार्थना कर रहे हैं, सब देवता 33 करोड़ आके प्रदक्षिणा कर रहे हैं, बार बार वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, श्लोक बोल रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और स्तुति गा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कोई आपके सामने शंकर भगवान आए, ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, चंद्र आए, वरुण आए, सब लोग आपके पेट को देखकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आश्चर्य होगा ना, अरे क्या बात है। और वो देख रही है कि वो जहां बैठ रही है वो सब जगह प्रकाशित हो रही है, घर में बैठे तो घर प्रकाशित, बाहर गए तो सब प्रकाशित, अंधेरे में प्रकाशित, सब जगह पे सब उज्जवल प्रकाश फैल रहा है, और वो सैकड़ों गुना, हजारों गुना, लाखों गुना और सुंदर सुंदर बनती जा रही थी दिन ब दिन। पति भी देख रहे उनको, अरे क्या अद्भुत सौंदर्य हो रहा है मेरी पत्नी के अंदर, जगन्नाथ मिश्रा उनका नाम, वो भी आश्चर्यचकित हो गए, वो समझ गए कि कोई दिव्य जीव मेरे पत्नी के गर्भ में बसा हुआ। लेकिन वो दिव्य जीव नहीं था, वो स्वयं भगवान थे, कोई साधु महात्मा कोई देवता नहीं थे, स्वयं गौलोक धामेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक सभी सृष्टि के रचयिता श्री कृष्ण भगवान एक अद्भुत रूप में सची माता के पेट में विराजमान थे और वो जन्म लेते। क्या उनको बताते, जब जन्म लिया उन्होंने तो हमारे जैसे जन्म लिया उन्होंने, एक पेड़ के लिए जन्म लिया, उसका नाम है नीम, नीम का पेड़, इसलिए उनका नाम रखा गया निमाई, कि सभी संकटों से उनका रक्षण हो जाए और सभी जग का उद्धार करे, इसलिए उनका नाम निमाई रखा गया। सची माता के जो पिताजी थे उनका नाम था नीलंबर चक्रवर्ती, वो बड़े विद्वान पंडित ज्योतिषी देव, उन्होंने कहा, तब देखा उन्होंने कुंडली बनाकर उसे और कुंडली में देखा, अरे तो बहुत अद्भुत कुंडली है, तो यही राम थे, यही नरसिंह भगवान थे पहले, यही कृष्ण थे और यही अभी चैतन्य महाप्रभु बनकर तुम्हारे घर पे, मतलब सची माता के पुत्र बनकर आए हुए हैं, तो ये सब जग के पालन करता है, इसलिए इनका नाम विश्वंबर रखो। विश्वंबर मतलब जो विश्व का भार संभालते हैं, सबका लालन पालन पोषण करते हैं, तो इसलिए नाम का नाम विश्वंबर रखा गया। आसपास की औरतों ने नीम पर्वत के पेड़ के नीचे जन्म होता हुआ देखकर उनका नाम निमाई रखा। नीम का पेड़ होता ना बहुत मतलब पवित्र माना गया है, उसके पास रहने से कोई भूत प्रेत अशुभ अपवित्र का परिणाम नहीं होता है। नीम जो पत्ते होते हैं मुंह में डालने से भी कोई अशुभ नहीं होता है, इतना पवित्र माना गया उसे। उसके सेवन करने से खून की शुद्धि हो जाती है, जो अपवित्र खून होता है वो शुद्ध हो जाता है। उसके नीम के पत्ते खाने से मच्छर नहीं काटते किसी को, पता है आपको, खास करके आप लोगों को जो मिरावट में रहते हैं उनके लिए ये मैं ऐलान कर रहा हूं, आपके लिए काम की चीज है बहुत। चलो खाना मुश्किल है लेकिन वो कड़वा खाएंगे तो रात को मीठी नींद सोएंगे, ये सच बात है। नीम का पत्ता चबा दबा के जो खाते हैं या नीम का रस जो पीते हैं उसको मच्छर नहीं काट सकते, मच्छर को मीठा कुछ चाहिए। इसलिए उनका नाम निमाई रखा गया। आगे जाकर ये पंडित बने तो निमाई पंडित नाम रखा गया, और बहुत उन्होंने बचपन से अपना जीवन का उद्देश्य क्या है सबको बता दिया। जब रोते थे तो बहुत रोते थे, तो सब सखियां आती थी नेबर से, परिवार से, पड़ोस से, और कुछ भी करने से रोकते नहीं थे, जैसे ही हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे रुक जाते थे, हरे कृष्ण मंत्र बोलना रोक दिया वापस रोना चालू करते थे। तभी से उन्हें दिखा दिया कि आगे क्या करने वाले, वो कुछ भी खिलौना देते थे, खाना देते थे, मिठाई देते थे, लेकिन रोना बंद नहीं करते। कीर्तन किया ताली बजा के, तुरंत रोना बंद। तो उनके घर में, सच्ची माता के घर में दिन भर अलग अलग सखियां आकर तालियां बजाकर कीर्तन ही किया करते थे उसको हंसाने के लिए, क्योंकि कीर्तन करने से बहुत हंसता था बालक। यही उनके जीवन के हमारे लिए देन है कि उन्होंने सबको बाल्यकाल से लेके एंड तक इसी काम में लगाया। और इतने नवद्वीप में लोग थे और सब लोग आनंद के सागर में डूबते थे, केवल महाप्रभु निमाई जो चैतन्य महाप्रभु का बाल स्वरूप है उसको देख देख कर। एक दिन उनके घर में एक सांप आया, छोटे से थे तो बालक, आप देखते हैं ना बालक किसी बिल्ली के पीछे किसी खिलौने के पीछे भागते रहते ना, देख जानते नहीं कि क्या है, काटेगा नहीं काटेगा, कोई चलता हुआ वस्तु दिखा उसके पीछे भागने लगते हैं, कोई गाय का बछड़ा तो पूछ पकड़ लेते हैं उसका, कोई चूहा के पीछे भागते हैं, कोई बिल्ली के पीछे भागते हैं, उनको अच्छा लगता है बच्चे को, इसलिए उनको चलते हुए खिलौने दिखाते ना, वो कोई गाड़ी है ऑटोमेटिक वो देते रहते, उसके पीछे पीछे भागते रहते। सांप आया उनके घर पे, सब लोग डर गए, लेकिन ये बालक जो है सांप के पास में जाता है, तो सांप जो है वो बड़ा था, लंबा चौड़ा था। सांप जैसे ही बालक उसके पास में गया, सांप एकदम गोल गोल हो गया और बालक जाके उसके बीच में जाके बैठ के सो गया आराम से। अभी सबको कितना आश्चर्य हो गया और डर लग रहा था कि ये सांप उठेगा काटेगा तो क्या होगा, और कोई पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है क्योंकि पास जाएगा सांप को डिस्टर्ब करेगा, सांप बालक को काटेगा। तो सब लोग दूर से बैठ के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल कीर्तन ही कर रहे हैं, डर डर के मारे कर रहे हैं, भगवान ये निमाई को कुछ हो ना जाए, इस बालक को कुछ हो ना जाए। वो आराम से अपना टगड़ी डाल के सो रहा है सांप के गोल गोल के अंदर। बहुत देर बाद ना उनको डिस्टर्ब हो रहा है ना सांप को डिस्टर्ब हो रहा है, आराम से बैठे हुए दोनों। बहुत देर के बाद में ये वो बालक उठ जाते हैं तो सांप अपने आप गोल निकाल के चला जाता है। तो जो एक ग्रंथ में लिखा है, इसे वर्णन किया है, वो बताते हैं कौन था वो सांप। तो सांप स्वयं अनंत शेष थे, क्योंकि वो शिव सागर के अंदर क्या करते हैं, ये अनंत शेष जो है वो पूरा बेड बन जाते हैं उनके लिए, शैया बन जाते हैं सोने के लिए आराम से, ऊपर से छत्र भी देते हैं, हजार उनके फन है, हजार फन वाला जो छतरी देते हैं उनको, और पूरा ऐसा लंबा चौड़ा बिस्तर बना देते हैं, उस पर लक्ष्मी बैठी हुई चरणों को दबा रही है। पर लग रहे अरे हमारे भगवान नीचे जाए अवतार ले रहे हैं, बालक बन के सच्ची माता के आंगन में खेल रहे हैं, चलो हम भी जाके उनको आनंद देते हैं। तो गए उनके आंगन में, बन गए उनके लिए वापस एक बार सोने की जगह, सो गए आराम से, आनंद दिया चले गए। तो सब आश्चर्य कर रहे हैं, कौन है बालक तुम्हारा, पता नहीं कोई देवता होगा, कोई महात्मा होगा, कोई सिद्ध पुरुष होगा, कोई महापुरुष होगा, लेकिन जानते नहीं कि भगवान है, क्योंकि वो भगवान है ये सबसे वो बात छुपाना चाहते हैं, ये इनका विशेष अवतार है, क्योंकि वो भक्त बनकर आए, भगवान तो है वो, लेकिन किसी को वो बताना चाहते नहीं है कि वो भगवान है। जब भी किसी ने सोचा कि भगवान हो सकते हैं तो वो विष्णु 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 ऐसे बोलते थे, नहीं 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 ये नहीं हो सकता है, एक जीव कैसे भगवान बन सकता है, मैं तो साधारण जीव हूं, मैं तो भक्त हूं भगवान का, ऐसे बोलकर छुपा देते वो भगवान है। एक बार सची माता जब आई बाहर, बाहर गई थी वो, तो बाहर से आई तो देखा तो क्या सब घर के अंदर चरण चिन्ह है, पैरों का तो ना बच्चे जो कीचड़ से आए चल के चलते, और घर पे भी आ गए तो सब घर में कीचड़ के चरण के चिन्ह बनेंगे ना पूरे घर पे, तो ऐसे सब चिन्ह जो है पूरे घर में भरे हुए, और फिर साइड देखा तो दीवार पे भी लगे हुए, ऐसे लगता है कि ऊपर जा रहे हैं, फिर तो सीलिंग पे देखा तो सीलिंग में भी चल रहे हैं, अरे सब जगह चारों दीवार पे हैं, हर रूम के दीवार में हैं, और सब रूम के ऊपर के छत पर भी वही चरण चिन्ह लगे हुए जैसे कि मानो चल रहे हैं। तो उनको लगा कि हमारे घर में जरूर ही कृष्ण भगवान वैकुंठ से आकर उन्होंने आज अपने घर में घूमे होंगे, क्योंकि वो चरण चिन्ह में चिन्ह भी है ना, सर त्रिकोण भी है, अंकुश भी है, शंख भी है, चक्र भी है, पताका भी है, वेदी भी है, हाँ पंछी भी है, सब वो चिन्ह लगे हुए उसके अंदर, भगवान के जो चरण होते हैं ना उसके अंदर दिव्य चिन्ह होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर भगवान का अवतार मानना है तो उनके चरणों में और उनके हाथ में वो चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, उनको लाइन 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 दिखाई पड़ रहे ना आपको, ऐसे आपको चरण दिखाई पड़ेंगे, शंख के, चक्र के, पद्म के, गदा के, अंकुश के, सब दिखाई पड़ेंगे ऐसे हाथ पे, हाथ का छिक्का लगाएंगे तो वहां पर भी सब उठेंगे, और पैर में भी ऐसे रहेगा। अब जो चलेंगे व्यक्ति तो पैर के जो चिन्ह पड़ेंगे उसमें भी वो चिन्ह दिखाई पड़ेंगे, तभी ऐसे व्यक्ति को भगवान का अवतार मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा ये भगवान के अवतार है, ये बड़े महात्मा है, सफेद दाढ़ी है, मुंह में दांत नहीं उनके, लेकिन ये भगवान के अवतार है। ऐसा नहीं होता है, भगवान के अवतार कभी बूढ़े नहीं होते, दांत नहीं गिरते उनके कभी। हाँ, कभी उनको अपेंडिसाइटिस और जॉन्डिस और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज नहीं होता है, वो भगवान के अवतार नहीं होते, वो नकली अवतार होते हैं, ढोंगी लोग होते हैं। भगवान के अवतार का पूरा वर्णन किया गया, कौन भगवान के अवतार है। भगवान का जो भी अवतार होता है उसका शरीर 16 साल के आगे बढ़ता ही नहीं है, वो हमेशा जवान रहता है 16 साल का, जैसे कृष्ण भगवान थे, चैतन्य महाप्रभु थे, रामचंद्र भगवान थे, और सभी चिन्ह उनके हाथों पैरों पर दिखाई पड़ते हैं। तो सच्ची माता हाथ देखते हैं, सोचते हैं आज मेरे घर पे जरूर ही कृष्ण भगवान ने आकर सब जगह अपने चरण रखे। लेकिन वो चरण कमल जो थे वो चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के थे, उनके ना होते हुए वो ऐसे चले, घर भर चले, दीवार पे भी चढ़े, उल्टे चले, फिर वापस जमीन पे आ गए, फिर वापस चले, वापस जमीन पे आ गए। क्योंकि भगवान है, वो क्या नहीं कर सकते। एक दिन ऐसे ही आए और सब लकड़ी के होते ना मटके रखे हुए थे किचन के अंदर, ढाके सब तोड़ दिए उन्होंने। बोले मुझे अभी का भी चांद चाहिए, अभी का भी चाहिए मुझे। बोले चांद तो चांद नहीं, मतलब वो बोलते हैं कि वो जो मक्खन है ना वो मुझे चाहिए। बोले मक्खन नहीं, वो चांद है। नहीं नहीं, चांद हो कुछ भी हो मुझे वो अभी का भी चाहिए। नहीं, उसके अंदर ढाग है, उसके अंदर पॉइजन भी है। नहीं नहीं, मुझे अभी का भी चाहिए। तो नहीं मिल सका तो तोड़ दिया सब कुछ बर्तन। फिर माता को सिखाया उन्होंने, बोले क्या फर्क है उसके अंदर, ये भी मट्टी है वही मट्टी है। तो फिर माताओं को समझाती है, नहीं ये मट्टी का बर्तन है, इसमें हम खाना खा सकते हैं, खाना बना सकते हैं। वो जमीन में जो मट्टी होती है उसके अंदर हम खा सकते नहीं है, वो खाने से पॉइजन हो जाता है। और उसी मट्टी से जब बर्तन बनता है उसमें खाना बनाओगे तो वो अच्छा रहता है। तो उन्हें ये भी दिखा बता दिया अपने इस लीला के माध्यम से कि भगवान कोई निर्जीव नहीं है, कोई निराकार नहीं है, और भगवान का एक व्यक्तित्व है, भगवान की एक शक्ति है, और शक्ति भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति होती है। वो जो निराकारवाद है ना, मायावाद, इम्पर्सनलिज्म, काट दिया उन्होंने। ऐसा बहुत लीला किया उन्होंने। जमुना गंगा किनारे जाते थे वो, तो पानी के अंदर घुसते थे, और जो पानी में जो ब्राह्मण लोग भगवान का भजन करने के लिए खड़े हैं उनके अंदर से जाकर उनका पैर पकड़ कर उनको उल्टा करते थे, और कभी कभी मुंह में पानी लेकर गंगा जी का पानी से नीचे से उसके मुंह के ऊपर आकर मुंह पे पिचकारी मारते थे। सब कंप्लेंट करते थे, तुम्हारा लड़का बहुत नटखट है, बहुत शरारत करता है, बहुत मस्ती करता है, हमको पूजा करते ही देता नहीं है। जब हम कपड़ा उतार के जाते हैं जब गंगा जी के अंदर, तो वो कपड़ा एक्सचेंज करता है, इस साधु का कपड़ा वहां पर, वो साधु का कपड़ा यहां पर। कभी कभी जहां लेडीज लोग स्नान कर रहे हैं उनका कपड़ा उठाकर हमारे यहां रखता है, और हमारे साधु के कपड़े उतारकर औरतों के यहां रख जाता है। जब हम लोग स्नान करके बाहर आते देखते थे, अरे साड़ी और ये सब क्या है, और लेडीज वहां से आते बोलते, रही ये तो सन्यास का वस्त्र इधर कैसे आ गया, हमारे साड़ी और वस्त्र कहाँ गए। और जो ताली मार के जो लोग हंसता है, और रोज की परेशानी है। तो माता कहती, तुम मेरे बेटे के ऊपर बेकार में आरोप लगाते, कभी कभी तुम मुझे प्रूण किया करो। तो ये क्या करते थे, सबको तंग करके वो लोग घर पे कंप्लेंट करने के आने के पहले ही एक घर पे आते थे, मैया बहुत भूख लग रही है कुछ खाना खिला दो, तो मैया खाना खिलाती थी, मुझे बहुत नींद आ रही है, सुला देती थी उनको। उसके बाद में ये लोग आते थे कंप्लेंट करने के लिए, तुम्हारा बालक नदी में जाकर बहुत कष्ट कर रहा है, देखो अभी भी सबको परेशान कर रहा है। वो तो घर में सो रहा है, आप क्या बोल रहे हो, वो तो कभी का आया हुआ है, स्कूल से आया तब तब से घर पे आके खाना खा के सो गया है, और आप बोल रहे हो कि अभी अभी तक कष्ट कर रहा था। आप लोग झूठे बोलते हो, मेरे बच्चे पे लांछन लगाते हो, उस पर आरोप करते हो, उसको गलत बताते हो। देखो फिर वो आएगा पूछ के, मैया क्या हो गया, ये लोग शोर क्यों मचा रहे हैं। सब अरे तो अभी नदी में था, अभी पिचकारी मार के कपड़े उल्टे उल्टे करके आया था। ऐसे करके सबको वो तकलीफ दे देते, लेकिन इन सब में भी उन सबको बड़ी खुशी होती थी। कंप्लेन कर रहे हैं वो जा जाके, लेकिन ये सब अनुभव करने में उनको बहुत खुशी होती थी, क्योंकि वो भगवान है। भगवान जो जो भी कार्य करते हैं, हाँ, जो हमारे लिए बहुत घिलन हो सकता है, चोरी करना, तंग करना, किसी को परेशान करना, किसी के लिए दुख देना, लेकिन जब ये जब भगवान करते हैं सबको खुशी होती है। अभी आपका बाला जाके किसी का पेंसिल चुराएगा, पेन चुराएगा, किसी का घर में कुछ उठा के लेके आएगा, तो आप लोग दंड देंगे उसको। लेकिन भगवान ने माखन चुराया था, हम उसकी पूजा करते हैं माखन चोर के रूप में, क्योंकि वो भगवान है, उनका हर कार्य जो है वो दिल को शुद्ध करने वाला है। ऐसे ही ब्राह्मण आया और वो ब्राह्मण का नियम था कि वो अपने हाथ से खाना बनाएगा, कभी भी किसी के हाथ का नहीं खाएगा। तो ब्राह्मण जब जगन्नाथ मिश्रा सची माता के घर पे आया, तब निमाई बहुत छोटी उम्र का था, तो पिताजी ने सब खाने का इंतजाम किया, धान्य दिया, सब्जी दिया, बोला बनाओ। तो उन्हें अच्छी तरह से प्रेम से बनाया, उनके पास गोपाल जी की मूर्ति थी उसको घर पे रखा उन्होंने, उनको सब कुछ खाना बनवा के, चावल बनवा के उसका भोग लगाया, घंटी बजाई, हाँ घंटी बजाई तो ये आ गया निमाई, तो चावल पे हाथ डाल के खाया उसने। तो ब्राह्मण बोला हाय 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 हाय, मैंने गोपाल जी को भोग लगाया था, उसको भोग लगाने के पहले इसने खा डाला, सब अपवित्र कर दिया, अभी मैं क्या करूं, शायद गोपाल जी की इच्छा ये है कि मैं भूखा रहूं आज। तो इसका हाय हाय पुकारते हुए सुनकर वो बालक ने चावल हाथ में लिया, बालक भाग गया। जगन्नाथ प्रसाद डंडा लेकर आए, अरे इसको मारना चाहिए, अरे तुम्हारे बालक ने मेरा चावल खाया, भगवान को भोग क्या लगाऊंगा अभी मैं, शायद उपवास करना पड़ेगा। तो जगन्नाथ मिश्रा का डंडा देखे भाग जाते निमाई, विनती करते अरे ब्राह्मण देवता माफ करना, हमारा बालक नटखट है, अभी आप दोबारा भोजन बनाना। बोले बहुत लेट हो चुका है, अभी रात को इतना देर से दोबारा भोजन बनाना, कब भोग लगाऊंगा, कब खाऊंगा, नहीं भगवान की यही इच्छा है कि आज मैं उपवास करूं। नहीं नहीं मैं ब्राह्मण देवता प्लीज आप जरा मेरे माफ करना मुझे, आपको कष्ट हुआ, प्लीज दोबारा बनाइए। ठीक है दोबारा बनाते, पूरा दोबारा बनाते, चावल सब्जी चावल सब बनाते हैं और दोबारा पूरा सजाते हैं, तुलसी रख के घंटी बजाते हैं, प्रार्थना करते हैं के हे गोपाल जी मेरा भोग को स्वीकार करो। बहुत लेट हो गया रात को, डेढ़ बज गया रात को, जैसे घंटी बजती है गोपाल जी आओ और मेरे भोग को स्वीकार करो, तुरंत निमाए भाग भाग के आते हैं और उसको खा जाते हैं। बोलते अरे हाय हाय ये बालक ने मेरा फिर भोग भ्रष्ट कर दिया। फिर निमाई को मारने के लिए सचित माता जगन्नाथ मिश्रा भाग के आते डंडा लेकर, वो भाग जाते हैं। तो इससे मतलब अभी तो मैं खाऊंगा नहीं, अभी तो मैं उपवास करूंगा, अभी कुछ मेरा खाने का काम नहीं है। उतने में निमाई के बड़े भाई जो है विश्वरूप, बहुत सुंदर, बहुत ही मधुर भाषण करने वाले, बहुत सुंदर भक्त है भगवान के, वो बलराम जी के अवतार है, हाँ निमाई के बड़े भाई है, वो आते हैं और हाथ जोड़ते हैं, अपने मीठी मीठी वचनों से बोलते हैं ब्राह्मण देवता मेरी आपको विनती है, मेरे छोटे भाई का अपराध न मानकर आप एक और बार खाना बनाए। तो ना ना बोलने वाले ब्राह्मण जो है इस विश्वरूप का मधुर भाषण सुन के मोहित हो जाते हैं और तीसरी बार बीच रात में भोग लगाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अभी इस बार ये निमाई नटखट बालक जो है इसको बंद करो, दरवाजे में घड़ी लगा दो, अंदर सुला दो उसको, और बाहर मैं पैरे में बैठूंगा, क्योंकि पहली बार भी जब उनको खाना खा के भागे थे ना वो, तो सखियों ने उनको अपने कब्जे में कर लिया, बोले हम इसको रखेंगे अभी वो वापस नहीं जाएगा। तो सखियां उनसे हंसी मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, फिर घंटी बची, सखियों के बीच में से कभी गायब हो गए समझे नहीं, इसलिए इस बार क्या किया उन्होंने, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम बोले मैं खुद रखूंगा मेरे पास, ऐसे करके माता ने अपने पास रखा, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, अंदर से बंद कर दिया, बाहर से बंद कर दिया, और दरवाजे के बाहर पिताजी डंडा लेके बैठ गए और फिर उन्होंने खाना बनाया, फिर भोग लगाया, कोई चांस नहीं उनके आने का। लेकिन इस बार बीच रात में उसको सुलाया और सब लोग सो गए, जो बाहर पिताजी बैठे हैं वो भी सो गए, खाली ब्राह्मण जागा है, बाकी सब सो गए, पड़ोस में सब लोग, बीच रात में कौन जगा रहेगा। और फिर घंटी बज रही है, गोपाल जी मंत्र बोल के पुकार रहे हैं गोपाल जी को अपना भोग लेने के लिए। तो फिर आता है बालक, बंद दरवाजे से, अंदर से बाहर से सब बंद है, फिर भी आता है और हाथ डाल के चावल खा जाता है। फिर वो बोलता है हाय 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 आपके बालक ने मेरा चावल खा लिया। लेकिन सुनने के लिए कौन जगह है उधर, कोई भी जगह नहीं, सब सो रहे हैं और किसी को भी आवाज भी नहीं आ रहा है, सब लोग इतने ढेर सो रहे हैं। तो वो चावल खाते खाते निमाई पंडित, निमाई बालक ने उनको कृष्ण का दर्शन कराया, वो गौर वर्ण के बालक थे, अचानक वो कृष्ण हो गए, ऐसे बासुरी पे खड़े हो गए, उसको देखकर ब्राह्मण पागल हो गया, अरे ये तो मेरे गोपाल है। फिर उसके पीछे गाय प्रकट हो गई, बहुत सारी गाय प्रकट हो गई, उस गाय के पीछे वृंदावन प्रकट हो गया, पूरा वृंदावन का दर्शन हुआ, गायों के साथ, पंछियों के साथ, मोरों के साथ, और उसके सामने कृष्ण और बलराम और कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। तो ब्राह्मण पागल हो गया, एकदम बेहोश हो गया, उसके आंखों से आंसू होने लगे, बोले हे गोपाल हे गोपाल, पर तुम मुझे पुकारते हो इसलिए मैं आता हूं, और जब मैं आता हूं तुम चिल्लाते हो, मुझे को पुकार रहे हो, तुम मेरे जन्म जन्मांतर के भक्त हो, अनंत जन्मों से तुमने मेरी सेवा की है, अलग अवतार में तुम आते हो और मुझे सेवा करते रहते हो, और तुमने मुझे ही पुकारा इसलिए मैं आया, मैं ही वही गोपाल हूं। तो ब्राह्मण जो है बार बार बेहोश गिरता है, बार बार उठता है, बार बार उसके आंखों से आंसू आते हैं। तो बालक कहता है कि तुमको मैंने जो भी ये अद्भुत दर्शन दिया है ये तुमको किसी को कहना नहीं है, अगर तुम किसी को बताओगे कि आज रात को क्या हुआ और तुमने क्या देखा तो तुम उसी क्षण मर जाओगे। तो ब्राह्मण वादा करता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसी अद्भुत घटना होने के बाद में कितना उसको उत्सुकता होगी, मैं किसको बताऊं किसको नहीं बताऊं, ऐसा होगा कि ना आपको? हाँ, आपको अचानक किसी बड़े आदमी का दर्शन हो गया रस्ते में, अचानक कोई आदमी, तो आप कितने लोगों को बोलेंगे? आपका मुख थकेगा ही नहीं, हजार लोग बोलेंगे तो आपको हजार हुए एक भी आदमी को बोलने का दिल करेगा आप? तो कितनी उत्सुकता होगी उसके मन में कि मैंने कल रात को बीच रात में गोपाल को देखा, वृंदावन को देखा, सब भाइयों को देखा, और मुरली बजाते हुए गोपाल को भी देखा, लेकिन वो बोल नहीं पाया उसका मुंह बंद। उसी ने उसने इनके घर के पास ही झोपड़ी बना ली और उधर ही परमानेंट रहने लगा हो, ताकि रोज मेरे गोपाल का दर्शन होता रहे। रोज वो घर पे आता था और बालक को दिखता था, लेकिन किसी को कहने पता था कि ये कौन है। वो सोचता था कि मैं बता दूं क्या सच्ची माता को, जगन्नाथ मिश्रा को, कि तुम्हारा बालक कौन है, तुम्हारा बालक स्वयं कृष्ण है, गोपाल है, लेकिन वो बोल नहीं पाया, जिंदगी भर उधर ही रहा। रोज गोपाल मतलब निमाई की सुंदर सुंदर बाल जिलाओं का दर्शन करते रहो वहां देखे। इस तरह से निमाई पंडित ने, जैसे कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया और नंद महाराज को अनंत सुख दिया बालकपन में, ऐसे निमाई ने सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा को अनंत सुख दिया, पड़ोस की सखियों को, बालकों को। और इनकी एक विशेषता है, इनके अवतार के अंदर भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन सबके भक्त जो है वो अलग अलग रूप धारण करके इनके अवतार में आते हैं। जैसे प्रहलाद जी आए हैं वो नरसिंह भगवान के भक्त हैं, वो सत्ययुग में उनका अवतार हुआ था, तो प्रहलाद जी वासुदेव दत्त बनकर आते हैं, नारद मुनि जी श्रीवास पंडित बनकर आते हैं, महाविष्णु अद्वैत आचार्य बनकर आते हैं, नित्यानंद बलराम जी बनकर आते हैं, वो हनुमान जी मुरारी गुप्ता बनकर आते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग युगों के, अलग अलग अवतारों के, अलग अलग प्रकार के जो भक्त हैं सभी लोग इनके अवतार में एक साथ में आते हैं। बाकी सब अवतारों का क्या नियम होता है, उन अवतार के जो भक्त हैं वही जन्म लेते हैं उस समय, बस वो लीला करने के लिए आते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का विशेषता है, जब वो जन्म लेकर आते हैं तो जितने भी अवतारों के जितने भी भक्तगण हैं वो सब लोग मत्स्य अवतार से लेके कुर्मा अवतार से लेके वराह अवतार से लेके सभी अवतार के भक्त लोग एक साथ में इनका अद्भुत जो प्रेम लीला है वो देखने के लिए जन्म लेते हैं। कितना औदार्य है उनके अंदर, इतने छोटे समय के अंदर वो जीवन की परिपूर्ण भेंट जो है प्रेम और भक्ति वो हर जीव को देने वाले हैं, वो देखने के लिए वो अलग अलग रूप धारण करके वहां पर आते हैं। जब जन्म उनका हुआ तो सरस्वती लक्ष्मी पार्वती सभी देवताओं की पत्नियां सब लोग ब्राह्मणी बनकर आ गए, उधर सच्ची माता के घर में घुस गए गिफ्ट लेकर बालक का दर्शन करने के लिए। ये अद्भुत मौका है, इतने अवतारे अवतार भगवान के, स्वयं भगवान अवतारे बनकर आ रहे हैं सच्ची माता के घर में, देवता बनकर आएगा सब लोग चकित हो जाएंगे ना, तो ब्राह्मण ही बनकर आते हैं, ब्राह्मण बनकर आते हैं, सब ऋषि मुनि सप्तऋषि देवता ब्रह्मा सब लोग ब्राह्मण बनकर घर पे आते हैं गिफ्ट देने के लिए। सोच सकते हैं आप कितना सुंदर वातावरण रहेगा उस समय, सब जगह प्रकाश फैला हुआ है, सब जगह पर पापियों के और पुण्यवान लोगों के मुख से भगवान का नाम गूंज रहा है, और वैसे में चैतन्य महाप्रभु जन्म लेते हैं सब दुनिया के लिए कृपा करने के लिए। तो इसमें हमारा उनका संबंध क्या है, वो हमारे लिए आए हैं, कोई शस्त्र लेकर नहीं आए, वो चक्र धनुष धनुष बाण गदा और परशु ऐसा कोई लेके नहीं आए, वो उनका अस्त्र एक ही है भगवान का नाम, जो पिछले अवतारों में अपने अलग अलग अस्त्रों को शस्त्रों को लेकर राक्षसों का वध किया, उन्होंने भयंकर राक्षसों को मार डाला, वही व्यक्ति इस अवतार में कोई शस्त्र लेकर नहीं आया है, केवल भगवान का नाम लेकर आया सबको बांटने के लिए। कोई योग्य हो कोई अयोग्य हो, कोई पात्र हो कोई अपात्र हो, कोई अच्छी जगह हो या खराब जगह हो, कोई कुछ दिखा नहीं उन्होंने, कोई गरीब हो, कोई बुद्धू हो, कोई पढ़ा लिखा हो, कोई धनवान हो, कोई भेदभाव नहीं किया, सब लोगों को हाथ जोड़ जोड़ कर भगवान का नाम दिया। क्या नाम दिया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते कितना ही केवल जप कर गए, सबसे पतित जीव भी सबसे बड़ा प्रेमी भक्त भगवान का बन सकता है। और आप बोलेंगे हम लोग गरीब है, बहुत पैसा नहीं है, हमारा क्या पोजीशन है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसा कृपा किया उन्होंने कि कोई भी बोल नहीं सकता है कि मैं आपकी कृपा ले नहीं सकता भगवान, मैं आपकी कृपा को ले नहीं सकता, ऐसा बोल नहीं सकता कोई। वो जो बहाना बनाने का इसको है वो बोल सकता है, लेकिन ऐसा कृपा किया उन्होंने सबके ऊपर कि कोई भी व्यक्ति ले सकता है। यहां तक कि जो शूद्र व्यक्ति है वो भी प्रवचन कर सकता है, भगवान की पूजा कर सकता है, ब्राह्मणों को कार्य कर सकता है, केवल भगवान का नाम का जप लेकर। हमारे मंदिर में कितने लोग ऐसे जो अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप है, लेकिन आज ब्राह्मण जैसे भगवान के विग्रहों की पूजा करते, डीटी वर्शिप, केवल नाम के सहारे। हमारे हॉस्पिटल में अभी मेरे को SMS आया, हमारे हॉस्पिटल में मरोगोड़ा पाटिल नाम के हमारे असिस्टेंट थे, उनका कल ब्राह्मण दीक्षा हो गया। उन्होंने SMS किया मुझे कि गुरु महाराज ने मुझे कल पुना में ब्राह्मण दीक्षा दिया, गायत्री मंत्र दिया, अभी हम ठाकुर जी की सेवा करें। तो जाति से ब्राह्मण नहीं है वो, जन्म से ब्राह्मण नहीं है, ऐसे विद्वान MBBS MD नहीं है, लेकिन भगवान के नाम का सहारा लेकर कितना प्रगति किया उन्होंने, हम सब लोग कर सकते हैं। अरे आप तो डॉक्टर हो, अरे आप तो डायरेक्टर हो, आप तो क्या है, आपको अच्छा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, पति से पतित हो, दुखी से दुखी हो और बहुत सुखी हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इस नाम को लेकर अपने जीवन का स्तर जो है वो सर्वोच्च कर सकता है। और जो सत्ययुग के संतों को प्राप्त नहीं है वो प्राप्ति कलयुग में रहकर भी कर सकता है। जो द्वापर के और त्रेतायुग के यज्ञ करने वाले संतों को, ऋषियों को प्राप्त नहीं है, हजारों साल तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं है, वो कुछ 40-50 साल कलयुग के अंदर जन्म लेने के बाद भगवान का नाम जप लेके प्राप्त कर सकते हैं। एक ब्राह्मण था और एक वेश्या थी। ब्राह्मण ने बहुत भगवान का पूजा किया था और वेश्या तो वेश्या थी, तो उसका घर आमने सामने था। तो ब्राह्मण लोग पूजा रोज पूजा करते करते सोचता था मन में, अभी वेश्या क्या करती होगी, किसके साथ संबंध करती होगी, ऐसा करके पूजा करता, मतलब उसका पूजा कर रहा है वो, लेकिन उसका ध्यान उसके तरफ था। और वो वेश्या जो भी गलत काम करती थी, सोचती थी ब्राह्मण कितना भाग्यवान है, देखो भगवान की पूजा कर रहा है, मैं कितनी दुर्भाग्य। तो जब ही अंतिम समय आया तो भगवान के दूत आए और वो वेश्या को भगवान के धाम लेके गए। ब्राह्मण चिल्लाता रहा, अरे मैं ब्राह्मण हूं, मैंने इतना पूजा किया है, इतना शास्त्र पढ़ा है, इतना श्लोक बोला है मैंने, तो तुम्हारे लिए 1000 जन्म और लगेंगे। लेकिन वेश्या को भगवान के धाम में ले गए। आप बोलेंगे अच्छा है, वेश्या बनना अच्छा है, वेश्या का काम करते करते उसके बारे में सोचना अच्छा है, ये उसका मैसेज नहीं है। मैसेज क्या है कि वो वेश्या होने पर भी जब भगवान का ध्यान करती थी तो भगवान का धाम में उसका उद्धार हो गया। तो वेश्या होने से बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ उसका, तो अपने कर्म को कोसती थी कितनी दुर्भाग्य हूं मैं, तो ब्राह्मण होते हुए वो वेश्या के बारे में सोचता था। तो आपके मन में क्या है, क्या चल रहा है, मन में कौन सी खिचड़ी पक रही है, इसके ऊपर सब डिपेंड रहता है। अभी कथा चल रही है चैतन्य महाप्रभु की, आपके मन में क्या विचार चल रहा है, अरे कभी खत्म होगा, 4 बज गए, ऐसा विचार आपके मन में है कि आपको और भगवान की कथा सुनने का इच्छा आ रहा है, किसी को नींद आ रही है, किसी के मन में क्या विचार आ रहा है, पता नहीं क्या बोलने वाले हैं। हरेक का पिच अलग अलग है, हरेक का मन अलग जगह पर बैठा हुआ है, और एक कथा चल रही है लेकिन हरेक के मन में उसका अलग अलग परिणाम हो रहा है, क्योंकि हरेक की चेतना अलग अलग है, हरेक की भावना अलग अलग है। अगर सही भावना से हरेक व्यक्ति अगर भगवान का नाम और उनकी कथा को स्वीकार करेगा तो हरेक आदमी को वही लाभ होगा, जो धनवान को होगा वही गरीब को होगा, जो सुंदर आदमी को होगा वही करोड़ आदमी को होगा, जो पढ़ा लिखा होगा उसको जो लाभ होगा वही सबसे अनपढ़ व्यक्ति को होगा, क्योंकि भावना एक होनी चाहिए। तो ये भावना को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। कैसी भावना से कलयुग में रहते हुए आप भगवान की सर्वोच्च प्राप्ति प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का हमारा संबंध है, ये देने के लिए वो आए हैं। और लेना हमारा उनका संबंध है। अगर हम लेने को तैयार हैं तो हम भाग्यवान हैं। अगर हम लेने पे भी कंजूस करते हैं, बोले क्या टाइम पास हो रहा है, कभी जाने को मिलेगा, कब प्रसाद, क्या प्रसाद में क्या रखा है आज, कथा के बाद में क्या मिलने वाला है, हाँ कचौड़ी है कि हलवा है कि लड्डू है, ये भावना में रहेंगे, इधर ही रहेंगे, इधर ही रहेंगे बार बार, और कुत्ता बिल्ली सुअर मनुष्य देवता बनकर हारते रहेंगे, यहाँ पर कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कि जब बट रहा है भगवान का प्रेम और भक्ति बट रहा है और हमारा ध्यान का लड्डू और हलवा और पेड़ा बर्फी पर है तो क्या होगा उससे, कुछ नहीं होगा। तो ये जगह जो है भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, इसके अंदर महाप्रभु चैतन्य की पूरी कृपा खचाखच भरी हुई है। कितना लेना है आपके हाथ में, अगर आपको लगता होगा बोरिंग काम है तो बोरिंग काम होगा और रहो यहीं पर जन्म जन्मांतर तक, और सोचेंगे अरे क्या हुआ, हम लोग कुछ भी हो, वार्ड बॉय हो या डॉक्टर हो या कोई मैनेजर हो, ले लो जो इतना टाइम मिलता है उतना लाभ ले लो और जीवन धन्य कर दो, तो जो भी होगा वो भगवान के धाम चला जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। और वो उद्धार करने के लिए हम लोग यहां पर आए, उद्धार कराने के लिए, अपना लाभ कराने के लिए आए हैं यहां पर। ये भगवान की हमारे लिए बहुत बड़ी देन है कि हमको काम करते करते सब लाभ होने का मौका मिले। गौर पूर्णिमा मनाएंगे हम लोग, हाँ मुझे बता रहे थे हमारे स्टाफ लोग कि गौर पूर्णिमा है चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है, और जन्मदिन पे ऊपर हम भगवान को कुछ भेंट देते हैं कि आप आए हमारे जीवन में, बाहर आ गए, आपने अवतार लिया इसलिए भगवान का नाम सबको प्राप्त हो रहा है, आप कितने महान दयालु हो, करुणामय हो, कितने पापों को नष्ट करने वाले हो, कितने माफ करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कितने दयालु हो, करुणा सिंधु हो आप, और आपने हमारे लिए 500 साल पहले जन्म लिया और सबको लोगों को हरिनाम बांटा, आपका जन्मदिन है तो हम आपको भेंट देना चाहते हैं। हम क्या कहते हैं आपको, आप घर में अपने एक व्यंजन बनाइए, कोई भी आइटम हो आपको जो अच्छा लगता हो, लहसुन प्याज के बगैर किचन को साफ करके एक आइटम बनाइए, चाहे वो लड्डू हो और हलवा हो या कोई रबड़ी हो या कोई समोसा हो या कोई और चीज हो, सूखी चीज बनाइए आप। एक व्यक्ति को खाने के लिए कितना जरूरी है, दो चार पीस बनाइए, दो चार चार रोटी बनाइए, पूरण पोड़ी होली की बनाती है उसको बनाइए, हाँ क्या बोलते हैं उसको आप लोग, हाँ पूरण पोड़ी वो बनाइए, चकली बनाइए, लड्डू बनाइए, सब्जी बना सकते हैं। एक व्यक्ति को जितना जरूरी है उतना बनाइए और लेके आइए और बढ़िया तरह से हम लोग उसको भगवान को भोग लगाएंगे। हो सकता है 500 एक आइटम हो जाए, हो सकता है 300 एक हो जाए, एक आदमी एक भी बनाएगा ना तो ये 500 आइटम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो एक आदमी 10 आइटम बनाते हैं, वो लेके 10 बना के लेके आते हैं। लेकिन आप लोगों को विनती है, आप पुरुष हो या स्त्री हो, भगवान के जन्मदिन में एक 5 रुपया खर्च के 10 रुपया खर्च कीजिए और उनको एक भोग लेके आइए और प्रेम से उनको भोग लगाइए, तुलसी रख के भोग लगाएगा और महाप्रसाद के रूप में आपको मिलेगा। शायद आपने शायद आलू की सब्जी बनाई होगी, शायद आपको लड्डू का प्रसाद मिलेगा, आपने लड्डू बनाया होगा आपको शायद सलाद का प्रसाद मिलेगा, लेकिन प्रसाद महाप्रसाद होगा, डायरेक्टली भगवान को लगाया हुआ भोग जो है वो महाप्रसाद के रूप में आपको मिलेगा। और महाप्रसाद को ग्रहण करने से सभी पापों को हम नष्ट कर सकते हैं। महाप्रसाद एक कण भी हमने खाया और किसी को दिया, जन्म जन्मांतर के पाप एक साथ नष्ट हो सकते। इसलिए अस्पताल के अंदर खर्चा होता है जानते हैं, लेकिन क्योंकि हर प्रोग्राम के बाद में महाप्रसाद बांटते हैं सबको, कोई जागृति है, प्रभात जागृति है, विशेष जागृति है, या उत्सव है, या प्रेयर है, या कुछ भी हो, प्रेमांजलि है, या परिवर्तन है, या गीता कोर्स है, या और कोई फेस्टिवल है, कोई बहाना है, हर प्रोग्राम के बाद में प्रसाद देते हैं, क्योंकि प्रसाद का ग्रहण करने से जितने जन्म जन्म के पाप है वो सब खत्म हो जाते हैं। पापी से पापी व्यक्ति हो गया, कोई सुनने को तैयार नहीं हो, उसको प्रसाद दो, खाएगा तो उसके दिमाग में शुद्धि आ जाएगी और भगवान की कृपा का पात्र बनेगा, वो भगवान की कृपा उस तक पहुंच जाएगी। इसलिए आप लोगों को विनती है कि पहले जमाने में जब हम लोग बहुत मेहनत करते थे तो कोई के 501 551 आइटम भी बनते थे, अभी मुश्किल से 101 नहीं बनते हैं, क्योंकि आप लोगों को उसका जानकारी नहीं, नए नए स्टाफ लोगों को कि कितना आनंद आता है उसके अंदर। आप घर में एक आधा घंटा खर्च करेंगे और एक आइटम बना के लेके आएंगे, यहाँ पर उसको ट्रांसफर करके हम लोग तुलसी रख के भगवान को अच्छी तरह से प्रेम से भोग लगाएंगे, सबको बांटेंगे, इसमें कितनी खुशी होती है। जब भगवान को हम कोई आइटम अर्पण करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान के प्रसन्न होने से पूरा विश्व प्रसन्न हो जाता है, और विश्व प्रसन्न होने के पहले जो बनाने वाला है वो सबसे पहला खुश हो जाता है। ऑटोमेटिकली आप जब बनाएंगे आपको वो आइटम चखने को भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो अगर भगवान ने चख लिया, उसको स्वीकार कर लिया, तो सबसे पहले आनंद आपको होगा, उसके बाद विश्व को होगा। तो हमारा स्वार्थ तो उसके अंदर है ही, और वो स्वार्थ कोई कॉस्टली नहीं है, बहुत महंगा नहीं है। एक आइटम बनाने में क्या तकलीफ है, हम लोग बाहर घूमने जाते हैं 50,000 रुपए ऐसे खर्च कर देते हैं छोटा सा चीज के लिए, है ना। एक दिन साल में जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा है, क्यों नहीं बनाए हम लोग, ताकि हमें इस अस्पताल में भगवान की कृपा चाहिए। और खाना तो हमको खाना ही है, हम लोग 4 बार खाना खाते ही है। एक दिन क्यों ना भगवान के लिए बिना टेस्ट करके, बिना टेस्ट के किचन साफ करके, बिना लहसुन प्याज के शाकाहारी एक आइटम बना के क्यों न लाए भगवान के लिए, अनंत कृपा है उसके लिए। इसलिए आप लोग बनाइए, और कुछ भी अच्छा बुरा हो, कोई एक्सपर्ट हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। भगवान जो है ना भावग्राही है, वो देखते नहीं कि अरे राधा रमन ने तो इतना सस्ता आइटम लाया, अरे वो तो कमलाक्ष ने कितना महंगा आइटम लाया, उसका पहला खाऊंगा मैं, राधा रमन का बाद में खाऊंगा, ऐसा नहीं देखते। भगवान जो है वो आइटम आपने कितना प्रेम से बनाया है उस प्रेम को ही खाते हैं, बाकी आइटम आपको देते वापस, आप लोग खाओ है ना, जितना लगाया होता हूं मिलता है ना वापस, कि कुछ आधा आइटम खत्म मिलता है आपको उसमें, जितना लगाया वही रहता है ना, वो वैसे वापस आता है। लेकिन फर्क क्या होता है उसके अंदर, उसका जो अंदर का भाव है, जिस भाव से आपने बनाया है उस भाव को भगवान स्वीकार कर लेते हैं अपना समझकर, क्योंकि वो भाव ही हमारा होता है। बाकी चावल सब्जी सब उनके ही पृथ्वी से आती है, वो हम लोग लेके आते हैं, सब उनका दिया हुआ है, लेकिन हृदय का जो भाव है वो हमारा है, वो अपना ओरिजिनल है। वो लगाकर जब बनाएंगे तो उसी को स्वीकार करेंगे वो, और गरीब की सुखी रोटी में वही आनंद प्राप्त करेंगे, और अमीर की पच्चे पकवान में भी वही खुशी प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो भगवान है, हमारे जैसे नहीं है। हम आपके घर पे आएंगे बोलेंगे क्या राधा रमन जी, क्या सलाद सुखी रोटी खिलाया, क्या मजा नहीं आया कुछ, उसके घर पे गया तो कितना अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया पनीर खिलाया, हम लोग ऐसा बोलेंगे। हम लोग नकली लोग है ना, ढोंगी लोग है, हम लोग देखेंगे क्या अच्छा बनाएगा उसके घर पे खाने को जाएंगे, देखेंगे आज प्रोग्राम किसके घर पे, अरे इनके घर पे नहीं जाएंगे, उनके घर प्रोग्राम में बहुत अच्छा प्रसाद रहते हैं वहां जाएंगे, क्योंकि हम लोग ढोंगी लो साधु लोग हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान गरीब के घर में सूखी रोटी भी वैसे प्रेम से खाते हैं। विदुर के घर में गए, केला नहीं खाया, छिलका खाया, छिलका। दुर्योधन का 56 भोग को त्याग दिया उन्होंने, क्योंकि भाव गलत था उसका, और बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर रखा था, छोड़ दिया उसने। उसके घर से क्रॉस करके झोपड़ी में गए विदुर के, बिना बताए, और विदुर की पत्नी ने मतलब गड़बड़ हो गई उसका, अरे क्या अरे अचानक भगवान क्या करूं, घर में कुछ है नहीं, क्या केला मिला, केला खोला और इतनी खुश हो गई, अरे भगवान को क्या खिलाऊं, और सब केला निकाल के फेंक रही है, छिलका दे रही है, भगवान भी खा रहे हैं उसको, प्रेम से खा रहे हैं, चबा रहे, छिलका चबा रहे। कुछ देर बाद विदुर को खबर मिलती है, अरे भगवान मेरे झोपड़ी में आए, भाग भाग के आते हैं, देखते हैं अरे कि पागल मेरी औरत क्या कर रही है, केला फेंक रही है और छिलका खिला रही है, और भगवान आंखों में आंसू लेकर खा रहे उसको, बोले ये पत्नी मूर्ख पत्नी क्या कर रही हो। भगवान बोलते चुप रहो, जो कर रही है वो सही कर रही है, उसका भाव का आनंद ले रहे हैं भगवान, छिलका खा रहे हैं, ऐसे भगवान है हमारे। वो थोड़ी बोलेंगे कि अरे आपने तो क्या एकदम कंडम खाना लगाया, इन्होंने बढ़िया लगाया, ऐसा नहीं। सबका प्रेम स्वीकार करेंगे, कितना प्रेम है उतना लेंगे सब उसके अंदर, आपके भाव को स्वीकार करेंगे, आपके प्रेम को स्वीकार करेंगे। तो क्यों ना बनाया जाए उनके लिए, हाँ उनके लिए क्यों बनाए हम लोग, जो आइटम को देखेंगे बोलेंगे अच्छा है बुरा है, उनके लिए बनाए जो आइटम को नहीं देखेंगे, हमारे प्रेम को देखेंगे। इससे क्या होता है, गरीब से गरीब आदमी को भी मौका मिलता है उनको प्रसन्न करने का, है ना। भाव है तो भाव से अमीर है, लेकिन आइटम से गरीब है तो क्या हो, भाव से अमीर है तो स्वीकार करेंगे उसे। सब लोग बनाओ प्रेम से, जो आपको आता है, कुछ नहीं आता तो क्या करो, आलू काटो और उसको फ्राई करो, केवल कुछ मत करो, निकाल के लेके आओ, क्या उसमें करना है, उतना भी नहीं आता टाइम आता तो केला लेके आओ, उसको काटो, थोड़ा शक्कर डालो, थोड़ा घी डालो, इलायची डालो और रखो, भूख लगाओ। हम लोग हॉस्टल में ऐसे करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल भाव की कमी है। भाव लेके आओ और भगवान स्वीकार करेंगे। श्री गौरांग महाप्रभु की। 2 दिन के बाद आपको ये मौका है, 12 बजे के पहले लेके आइए, आपका आइटम स्वीकार करेंगे और आपका लिस्ट डब्बा रखेंगे, भोग लगाएंगे, कोई आइटम आपको महाप्रसाद के रूप में मिलेगा, आप घर जाके अपने परिवार को, नेबर को, मित्र को, बच्चों को सब दे दीजिए, सबका कल्याण कीजिए। आप वहां पर आइए, बड़े धूमधाम से कीर्तन में नाचिए, अभिषेक को देखिए। आप जानते हैं अभिषेक को देखने से जन्म जन्मांतर के पाप केवल देखने से नष्ट हो जाते हैं। भगवान का अभिषेक हो रहा है पंचामृत से, केवल देखने वाले का भी भाग्य उदय हो जाता है, करने वाले तो भाग्य तो क्या बताए। केवल वहां रहने से और खुली आंखों से देखने से भी अनंत लाभ होता है, क्योंकि भगवान का अभिषेक करने से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, जो भी दर्शन करते हैं उनका उद्धार हो जाता है, तो अभिषेक का दर्शन भी मिलेगा आपको, कथा सुनने को मिलेगी भगवान के बारे में, क्या है ये चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु की, गौरांग महाप्रभु की, गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय हो। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।